आप हैं SBS हिंदी के साथ।
संसद के सदन के नए अध्यक्ष ने जेंकिन सुरक्षा समीक्षा पर कार्रवाई का किया वायदा। ऑस्ट्रेलिया के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित एक नया कोविड वैक्सीन और NRL में मैनली के कोच डेस हेसलक के अनुसार क्लब में प्राइड जर्सी पहनने के फैसले की गलत तरीके से हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले पिलबरा क्षेत्र में शहर पोर्ट हेडलैंड में एक महिला को अदालत में पेश किया गया है, जिस पर एक घर में आग लगाने और तीन बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। 36 वर्षीय मार्गरेट डेल को कुछ समय के लिए पर्थ मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, लेकिन उसने अभी तक आरोपों के लिए कोई याचिका दर्ज नहीं की है। उसे अगस्त में फिर से अदालत का सामना करने के लिए हिरासत में भेज दिया गया है। डेल को 31 अगस्त को स्टर्लिंग गार्डन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल आज दोपहर मंगल 26 जुलाई संसद के नए सत्र के पहले दिन अपने कार्यालय द्वारा पारंपरिक रूप से दिए गए भाषण में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। सरकार द्वारा लिखित भाषण में औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया की सेवा में संसद की भूमिका को स्वीकार किया जाता है और इस अवधि के लिए लेबर सरकार के एजेंडे की रूपरेखा तैयार की जाती है। संबोधन के बाद संसद भवन के बाहर 19 तोपों की सलामी दी जाती है। क्वींसलैंड के लेबर सांसद मिल्टन डिक को प्रतिनिधि सभा के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिससे संसद के दौरान सरकार को अपना कानून पारित करने के लिए बहुमत मिल गई है। अपने चुनाव के बाद एक भाषण में मिल्टन डिक ने स्पष्ट और निष्पक्ष रहने और संसद की सुरक्षा में सुधार लाने का वादा किया है।
In the last parliament, we saw the Jenkins review highlight the ways that this building has failed to keep its occupants safe. However, it also presented a roadmap to ensure that we protect the people that we are responsible for. I take my responsibilities as a presiding officer in implementing the recommendations of this report very seriously. And I look forward to working with the Senate President and the incoming Deputy Speaker and all members to address this and other matters.
उधर सेनेट में सू लाइन्स को प्रेसिडेंट के पद के लिए चुना गया है। सू लाइन्स 1996 में लिबरल की सेनेटर मार्गरेट रीड के बाद इस पद के लिए चुने जाने वाली पहली महिला हैं। उधर अल्बनीसी सरकार चाहती है कि जलवायु परिवर्तन कानून पर हस्ताक्षर से नई संसद में उनकी पहली जीत हो। जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बोवेन का कहना है कि सरकार की योजना के तहत अगले पखवाड़े के भीतर निचले सदन के माध्यम से 2030 तक उत्सर्जन में 43% की कटौती और 2050 तक शुद्ध शून्य के बिल को गति दी जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि सितंबर तक सेनेट द्वारा इस कानून के पारित होने की उम्मीद नहीं है और निर्दलीय और ग्रीन्स के समर्थन के लिए बातचीत जारी है। क्रिस बोवेन का कहना है कि सरकार 43% उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य से शुरुआत करना चाहती है।
As I've said repeatedly, as I said at the press club, as is reflected in our nationally determined contribution signed by the Prime Minister and I, that's a floor, not a ceiling. We hope and expect Australia can do even better than that with the combined efforts of industry, unions, communities, government, state and federal.
ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स ने संकेत दिया है कि वे नई संसद पर अपनी मुहर लगाना चाहते हैं। नई सरकार के गठन के बाद आज यानी मंगलवार 26 जुलाई को कैनबरा में संसद ने अपनी पहली बैठक बुलाई और इसमें छोटी पार्टियों का एक बड़ा हिस्सा रहा। ग्रीन्स के नेता एडम बैंट का कहना है वे किसी भी नई कोयला और गैस परियोजनाओं को मंजूरी नहीं देने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। ग्रीन्स के सांसद मैक्स चैंडलर माथर, जिन्होंने ब्रिस्बेन में स्थित ग्रिफिथ सीट से लेबर के टेरी बटलर को हराया था, कहते हैं कि मतदाताओं की बस यही मांग थी कि जलवायु परिवर्तन और कई अन्य मुद्दों पर कार्रवाई की जाए।
I think one of the biggest assets the political establishment has is low expectations. But I think today, with all the new Greens MPs in Parliament, it's proof to the people of Australia and people across the country who want something better that you can go to an election talking about taxing billionaires and big corporations to get dental and mental health into Medicare, building a million public homes and introducing free university education and free childcare. And people will vote for it in their millions.
नए दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि डोमिनिक पेरेटे को इस बात की सूचना थी कि न्यू साउथ वेल्स के एक वरिष्ठ लोक सेवक को न्यूयॉर्क में व्यापार के अहम कार्य के लिए चुना गया था, लेकिन उसके बजाय जॉन बारेलारो को नियुक्त किया गया था। फेडरल जांच के लिए उपलब्ध कराए गए सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री को पिछले साल चुने गए उम्मीदवारों के बारे में मंत्री स्तरीय ब्रीफिंग मिली थी। ये सबूत विवादास्पद नियुक्ति को लेकर जून में राज्य की संसद में श्री पेरोटे द्वारा दिए गए पिछले बयानों का खंडन करता है, जहां उन्होंने कहा था कि इस भूमिका के लिए कोई उपयुक्त आवेदक नहीं मिला है।
Here are the facts. The first recruitment process did not identify a suitable candidate.
पश्चिमी सिडनी के वृद्ध देखभाल गृह में 19 निवासियों की मौत की जांच में पाया गया है कि नर्सों ने सुविधा में प्रकोप के दौरान कोविड-19 अलगाव नियमों को लागू करने में ढील बरती थी। मैरी वैनपुट के कोरोनियल जांच को सबूत दिया है कि एज केयर में लॉकडाउन के बावजूद उनके पिता बैरी जहांग को न्यू मार्च हाउस के सामान्य क्षेत्रों में बाहर जाने की अनुमति दी गई थी। प्रकोप के दौरान एंग्लिकेयर द्वारा संचालित इस सुविधा में हॉस्पिटल इन होम प्रोग्राम के तहत निवासियों को पास के अस्पतालों में स्थानांतरित करने के बजाय ऑन साइट इलाज किया गया था। सुश्री वैनपुट ने पूछताछ में बताया कि उनके बहनोई एक पैरामेडिक हैं और उसने उन्हें बताया था कि यह जरूरी नहीं है कि न्यूमार्च जैसी सुविधाओं में वेंटिलेटर और एक्सरे मशीन जैसी आवश्यक मशीनें उपलब्ध हैं या इन उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी हैं। सुश्री वैनपुट के पिता उन 19 निवासियों में से एक थे जिनकी वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद मृत्यु हो गई थी। वे उन 4 निवासियों में से एक थे जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के दवा नियामक ने किशोरों के लिए एक नई कोविड-19 वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है। थेरेप्यूटिक्स गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि नोवैक्सोविड के नाम से जाने वाले नोवोवैक्स के उत्पाद को 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अस्थायी स्वीकृति दे दी गई है। अब तक वे केवल मॉडर्ना या वयस्क फाइजर वैक्सीन ही लगवा सकते थे, लेकिन टीकाकरण देने से पहले ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी सलाहकार समूह अटागी द्वारा समीक्षा की आवश्यकता है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि अटागी का फैसला कुछ ही हफ्तों में सामने आएगा। अब भारत से कोविड मामलों की खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 14,830 नए मामले सामने आए हैं और फिलहाल रिकवरी रेट 98.47% पर है। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में 18,159 लोग ठीक हुए और 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 8.70 है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 55.54 हो गई है। खेल समाचार में मैनली के कोच डेस हैजलर ने आज दोपहर मंगलवार 26 जुलाई को एक माफी की सूचना जारी की है। यह तब आता है जब सेवन सी ईगल्स खिलाड़ियों ने इस सप्ताह के दौर के बहिष्कार की घोषणा की। डेस हैजलर का कहना है कि क्लब उनके सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों की वजह से नहीं खेलने के निर्णय को स्वीकार करता है। क्लब ने इससे पहले घोषणा की थी कि खिलाड़ियों को इंद्रधनुष के रंगों से सजी जर्सी पहनने की आवश्यकता होगी। क्लब का कहना है कि जर्सी पहनना खेल में विविधता और समावेशिता की स्वीकृति का प्रतीक है, लेकिन कोच का कहना है कि क्लब ने प्राइड जर्सी पहल शुरू करने से पहले खिलाड़ियों के साथ सलाह नहीं करने में गलती की।
Personally, I share the views that are inclusiveness across the game and society as an important matter, and the NRL is for everyone. In this specific instance, I also feel for these players. They were not included in any of the discussions of the decision-making of the jersey. At a minimum, they should have been consulted.
और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में एक दो बौछार की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 20 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक जाएगा। मेलबर्न में बरसात पड़ने की संभावना और यहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम 15 डिग्री रहेगा। कैनबरा में कल मौसम साफ रहने के आसार, वहां का न्यूनतम तापमान 1 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री। सिडनी में भी ज्यादातर धूप रहने की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम 17 डिग्री। ब्रिस्बेन में भी मौसम साफ रहेगा, वहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 19 डिग्री। डार्विन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 32 डिग्री तक जाएगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में छिटपुट बारिश के साथ तूफान की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 32 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।